The following is a lecture on Udo Sandesh, Brahmar Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, Verses 7 to 15, on the topic of Udo meets Nanda Maharaj. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India, on 25th December,
1998.
Sri Suka Vacha
Ittukta Uddhava Rajan Sandesham Bharturadritaha Adaya Rathamaruhya Jayajau Nanda Gokulam. Prapto Nanda Brajam Sriman Nimlochate Vibhavasau Channayanaha Nirvishatam Pashunam Khurarenubhihi.
इस प्रकार अपने भर्तु हो अपने भर्तार अनुभरण करता भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश उद्धव जी लिए आ गाया, बहुत आदर के साथ श्रद्धा के साथ संदेश को ग्रहण किए। एक एक बात पूछे कि मुझे नंद महाराज से क्या कहना होगा, कहाँ से प्रारंभ करूँगा, माँ यशोदा से क्या कहूँगा, सुबल मधुसूद और सब जो सखा है, सुबल सुशीदाम विषभ विशाल अर्जुन, इन सब से मैं क्या कहूँगा, और किससे पहले मिलूँगा, इन सब बातों को पूछे। आदायक अर्थ है लेना, भगवान से आग्रह करके सब बातें पूछे, कुछ तो बातें चित्त में धारण किए, याद कर लिए कि यही यही कहना है, आदाय का ही अर्थ है ले करके। और जो भगवान ने अपने हाथ से लिखा था पत्र कई कई गोपीजनों को, उसको भी संभाल करके रख और रथ पर चढ़कर चले। रथ पर चढ़कर क्यों चले, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं शीघ्र गमनार्थम, शीघ्र पहुंचने के लिए। हरे आचार्य कहते हैं कि ब्रज में मथुरा का आनंद दिखाना है, जिसे ब्रजवासी सभी सुखी हो जाएंगे, कृष्ण बहुत आनंद में, मोटर गाड़ी लेकर दिखाना है ब्रज में कि लड़का यहाँ से गया है तो बहुत सुखी है। यह भी एक भाव है भगवान का, ब्रजवासी नंद बाबा गोपी जन देखेंगे कृष्ण बड़े सुख से हैं, तो यह देख करके उनको बड़ा सुख होगा। अतः बड़े सुंदर रथ पर बैठा करके उद्धव जी को भगवान भेज रहे हैं, और उद्धव जी को विशेष वस्त्र भी दिए, जो पहले पहनते थे उद्धव जी वह नहीं, श्री कृष्ण तत्काल का उतारा हुआ नया वस्त्र उद्धव जी को दिया, अपने सब दुपट्टा धोती मुकुट सब कुछ उनको दिए, यह दिखाने के लिए कि मेरे मित्र का जब इतना अच्छा वैभव है तो मैं कितना सुखी होऊंगा। इधर से ब्रजवासियों को दुख नहीं सुनाना था भगवान, मैं बड़े दुख में हुई, नहीं तो और दुखी हो जाते, तो तब सुख सुखी तो उनमें है, कृष्ण के सुख से सुखी रहते हैं। इसी से उद्धव जी बहुत सज धज करके गए और रथ पर गए, और ये तीसरा कारण यह है कि उद्धव जी केवल शरीर से ही नहीं जा रहे थे, नंद बाबा के लिए उपहार ले जा रहे थे, यशोदा जी के लिए और गोपी जनों के लिए। मथुरा तो बहुत बड़ा मार्केट था, वहां से भगवान बहुत से अलंकार की वस्तुएं गोपी जनों के लिए खरीद करके दिए, जो बाह्य जगत में बाहर वो नहीं दे सकते थे, लेकिन अपने अंतरंग मित्र के द्वारा राधा रानी के लिए या अन्य सखियों के लिए बहुत सा उपहार भेज रहे हैं, इसलिए रथ की आवश्यकता पड़ गई। है न, रथ पर सब लाद करके पैकिंग करके भगवान दे रहे, रथ पर चढ़ कर चले। प्रयजन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी प्रयजन का अर्थ है प्रकर्षण, यजन विशेष रूप से गए, इसका अर्थ करते हैं कि अक्रूरतः अति अधिक विचित्र मनोरथा चरणाधीना यजन, अक्रूर से भी अधिक मनोरथ किए, विचित्र विचित्र मनोरथ। मैं श्री राधिका से ऐसे मिलूंगा, नंद महाराज से ये कहूंगा, ऐसे कहूंगा, ये बात कहूंगा, उनसे यह बात जरूर कहूंगा, ऐसे मैं उनका शोक दूर कर दूंगा, उनको ये कहूंगा, उनको ये कहूंगा, उसका ऐसे आलिंगन करूंगा, किसी से एकांत में ये बात बताऊंगा, यही मनोरथ करते हुए जा रहे थे। तो विचित्र मनोरथ, अक्रूर जी का भी मनोरथ अद्भुत है, हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उद्धव जी का मनोरथ उससे भी अधिक अच्छा विचित्र, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी प्र शब्द लगा रहे हैं। प्र यजौ, यजौ का अर्थ गय और प्र का अर्थ है प्रकर्षण, ऋतु का अर्थ है तदेव पोषण इति भाव, भरण करने वाला भेज रहा है ब्रज में, इसका अर्थ है कि भेजने वाले की दृष्टि यह है कि उद्धव का भरण होना चाहिए। भरण का अर्थ होता है पोषण, उत्कृष्ट वस्तु दे करके किसी को समृद्ध किया जाता है, तो इसको पोषण कहते हैं। भगवान ने सोचा कि इस संसार में सबसे बढ़ करके मेरा प्रिय मित्र उद्धव है, तो उद्धव को सबसे उत्कृष्ट वस्तु मुझे देनी है, क्योंकि उनके भरता है, भर्तु शब्द का भाव है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और भी शब्द वो दे सकते थे, लेकिन उद्धव जी की मानसिकता का अनुवाद कर रहे हैं। उद्धव जी जब पत्र लिए, संदेश लिए, तो उद्धव जी के मन में क्या था, उद्धव जी इस बात को समझ गए कि हमारा विशेष हित करने के लिए भेज रहे हैं, ये भाव आया, हमारे भर्ता भेज रहे हैं, मेरा भरण पोषण करने वाले भेज रहे हैं। तो किसी जीव का सबसे बड़ा पोषण, उसका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। कोई बहुत बड़ी बात सीखने के लिए हमारे स्वामी भेज रहे हैं, क्योंकि वो तो परम बुद्धिमान थे, कृष्ण की दशा को जब देखे विरह से बिकल, तो समझ गए उसी समय की ब्रजवासी कितने महान है, कितने प्रेमी है। उस समय उनके मन में भाव यही आ रहा था, कृष्ण हमारा सब तरह से पोषण किए हैं, कोई बहुत बड़ी कृपा हम पर हुई है जो हमें भेज रहे हैं, इसलिए भर्तुः संदेशम आदाया, भर्ता के पोषण करने वाले के संदेश को करके चले। तो उद्धव जी चल रहे हैं ब्रज में, रथ पर चढ़े हैं, और पूरे पथ में केवल यही चिंतन करते जाते हैं कि मैं निश्चित उनका शोक दूर कर दूंगा, और कई उपाय उनके पास है, मैं श्री कृष्ण की यह बात कहूंगा तो निश्चित सुखी हो जाएंगे, और इनको विश्वास है कि भगवान तुरंत जाएंगे ब्रज में। अपनी आंखों से जो उन्होंने दशा देखा कृष्ण की, तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि वे मथुरा में नहीं रह पाएंगे, उनको तो जाना ही है। तो उद्धव जी को पूर्ण विश्वास इस बात का है कि मैं ब्रजवासियों का शोक दूर कर दूंगा, एक दृष्टि से ही नहीं, वे सोच रहे हैं तर्क करके, चाहे जैसे ये कृष्ण का प्रेम बता करके, जैसे तैसे उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं शोक दूर कर दूंगा। शोक दूर किया भी है वास्तव में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितना दिन, जितने महीने उद्धव जी ब्रज में रहे, ब्रजवासियों का वह समय एक क्षण के समान बीत गया। कितने कुशल व्यक्ति हैं, भगवान का जो साथी है, प्रतिनिधि साथ में रहता निरंतर, उसमें कितनी बड़ी योग्यता है, सुखी कर दिया वास्तव में। और जब उद्धव जी ब्रज से आने लगे, तो उस समय वही शोक छा गया जिस समय कृष्ण आ रहे थे। उद्धव जी का संग पा करके वे लोग कृष्ण के संग जैसा सुखी हो गए, इतने महान व्यक्ति उद्धव जी हैं। तो ये चले, लेके उपदेश और संदेश पन उद्धव चले, सुजस कमाई दे उछाह उद्गार में। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, उपदेश, और पन पन का अर्थ है प्रतिज्ञा की ब्रजवासियों का शोक दूर कर दूंगा। इसको लेकर के उद्धव जी चले, लयके उपदेश और संदेश पन उद्धव चले, सुजस कमाई बे उत्साह उद्गार में। और हृदय में यह भी लालसा थी कि सुजस कमाऊंगा, भगवान के प्रेम में जो इतने भक्त मर रहे हैं, रो रहे हैं, जब मैं जा करके उनको सुखी करूंगा तो मेरा यश तीनों लोक में बढ़ेगा। वास्तव में बहुत बड़ा सुजस, उत्साह उद्गार में, उत्साह उद्गार मैं सुजस, मैं ऐसा उद्गार बोलूंगा, ऐसी बात बोलूंगा जिसमें उत्साह बढ़े। तो ऐसे उत्साह उद्गार में वक्तव्य के द्वारा मैं उनका सब दूर करूंगा। कहे रत्नाकर निहारी कान्ह कातर अपय, परंतु भगवान कृष्ण को जो उन्होंने कातर देखा, बिहवल देखा शुरू से अंत तक और रथ से विदा होते समय भी, तो आतुर भयो रहे मन न संभारने लगी। उद्धव जी स्वयं ही रोने लगे, रथ पर रोते जा रहे थे भगवान की दशा को देख कर। और जब जा रहे थे विकल थे, ज्ञान की गठरी जो संभाल करके रखे थे, कहाँ फट गई, कहाँ गिर गया ज्ञान, कुछ पता ही नहीं चला। ज्ञान गठरी की गांठ छरक की न जानो कब, नहीं जाने कि कब वो गांठ खुल गई और सब छिटा गया ज्ञान। हरे हरे पूंज सब सरकी कछार में, हरे हरे में धीरे धीरे, हरे हरे धीरे धीरे होता है, हरे हरे में धीरे धीरे जो भी पूंजी थी उनके ज्ञान की और बुद्धि की, वो सब सरक गई जमुना के किनारे पहुंचते कछार। दार में तमाल नहीं की कछु बिरमानी, और कुछ तो तमाल वृक्षों के डाल में फंस करके गिर गई, वही कुछ ज्ञान तो उधर गया। मतलब वहाँ के वृक्ष आदि को देखते ही उद्धव जी का भाव बिल्कुल परिवर्तन होने लगा प्रेम में, मथुरा से बिल्कुल भिन्न, सब कृष्ण प्रेम में। तो दार में तमालनी की कछु बिरमानी, और कछु अरुझानी है करीरन के झाड़, और कुछ करील की झाड़ियों पर ज्ञान खत्म हो गया, एक दाना भी ज्ञान का नहीं बचा उनके पास। क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे इसको, कहेंगे लयके उपदेश संदेश पान उधो चले, सुजस कमाई बे उषाह उद्गार में, कह रत ना कर निहारी कान कातर पे, आतुर भयो रहे मन न संभार में, ज्ञान गठरी की गाँठ छर की न जानो कब, हरे हरे पूंज सब सर की कछर में, दार में तमाल की कछु वीर मानी, आरु कछु आरु धानी है करी रन के घर में। तो हुआ क्या, ज्ञान की गठरी कोई रथ पर बांध करके वो नहीं रखे थे, ब्रज का दृश्य देख करके अब उनके भीतर यह आने लगा कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सार है, और ये तो सब रग रग में कण कण में कृष्ण प्रेम छाया हुआ है, इनको क्या सिखाना है, टीचिंग करने चले हैं। मतलब कृष्ण को भूल जाओ, सुख ही सुख है। तो अब इनकी जो प्रचार की कला है सब खत्म होने जा रही है, तो हरा हरे ज्ञान के गुमान घट जाने लगे। अब धीरे धीरे ज्ञान का गुमान घटता जा रहा था, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे नंद भवन नंद गांव की ओर, वैसे वैसे ज्ञान का गुमान बिकने लगा। मथुरा में बहुत बड़े व्यक्ति थे, सब लोग परामर्श लेने आते थे, और जैसे आपने कल सुना कि ये तो विष्णुओं के मंत्री थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ, ऐसे कुछ स्त्रियों को, कुछ बच्चों को और भगवान के माता पिता को समझा देना तो बिल्कुल खिलवाड़ समझते। हम समझा देंगे, उनको सुखी कर देंगे, तुम यहाँ आनंद से रहो, तुम मत रहो, कृष्ण को कहते मैं जा रहा। लेकिन जब ब्रज की सीमा में प्रवेश किए तो हरे हरे धीरे धीरे ज्ञान का गुमान घटी जाने लगे, वो घटने लगा, खत्म होने लगा। योग के विधान ध्यान होते टरी गए लगे, और योग की जो विधियां उनके मन में थी ऐसे बताऊंगा ये बताऊंगा, वो तो ध्यान से भी खत्म होने लगा। अब उनको ध्यान ही नहीं आ रहा था क्या बोलूंगा क्या बताऊंगा, योग किस चीज का नाम है। नैना नीत में नीव है, रोम सकल शरीर छय, आंखों में आंसू और सारे शरीर में रोमांच, ब्रज का दृश्य देखकर प्रेम अद्भुत सुख सूझ परिवे लगे। प्रेम में क्या अद्भुत सुख है, आनंद है, अब उद्धव जी के समझ में आने लगा और देखने लगे कि कोई दुखी नहीं है यहाँ, तो केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, ये अनुभव होने लगा। गोकुल के गांव की गली में पग पार तही भूमि के प्रभाव भाव और भर गए लगे। जब गोकुल के गांव की गली में प्रवेश किए, मतलब नंद गांव से भी बाहर ही गली कहते हैं जो छवर सिवान में है, तो गोकुल के गांव की गली में पग पार तही नंद गांव के अथवा और किसी गांव के गली में पग रखते ही भूमि के प्रभाव भाव औरे भर गए लगे। भूमि का ऐसा प्रभाव है कि अब उद्धव जी के मन में और ही भाव भरने लगे। क्या भाव हो गया, ज्ञान मारतंड के सुखाए मन मानस को सरस सुहाए घनश्याम करने लगे। ज्ञान रूपी सूरज जो इनके मन को सुखा दिया, मन मानस को, मन रूपी सरोवर को जो सुखा दिया, सरोवर का पानी घटता है सूरज के प्रकाश, ज्ञान जो है वो सूरज की तरह प्रखर। ज्ञान मारतंड इनके मन मानस को सुखा दिया था सरोवर को, अब इनके सरोवर में घनश्याम वर्षा करने लगा, सरस सुहाए घनश्याम करने लगे। लेकिन घनश्याम खूब बादल छा जाए, वर्षा होने लगे तो सरोवर भर जाएगा, मतलब अब ज्ञानी से प्रेमी होने लगे। अभी केवल वहाँ धूली में पग रखते हैं, इसका अर्थ है कि रथ से उतर करके अक्रूर जी की तरह लौट रहे हैं। उस धूली का प्रभाव, उस भूमि का ऐसा प्रभाव था कि ये सब दशा होने लगी। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति ब्रज में जा रहा है और भूमि के प्रभाव से इसकी दशा बदल जा रही है, और भूमि में बसने वालों का जब संग होगा तब क्या दशा होगी।
हरे हरे ज्ञान के घुमा लघ की जान लगे, जोग के भान ध्यान होते तरी वे लगे। नैन नीले नील रोम सकल शरीर छयो, अद्भुत सुख सुझि परी वे लगे। गोकुल के गांव की गली में पग पार तही भूमि के प्रभाव भाव और भरी दे लगे। ज्ञान मार तंड के सुहाए मन मानस को सरस सुहाए घन श्याम करी दे लगे।
घनश्याम का अर्थ है घना बादल, लेकिन एक अर्थ है कृष्ण। जो कृष्ण इनके मन को सरस मथुरा में नहीं बना पाए, यहाँ अदृश्य रूप से ब्रज में सरस बनाने लगे। ब्रजवासी जो लता पता है ये भी श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर रहते हैं, तो उनको देख करके अब कृष्ण के प्रति प्रेम का संचार होने लगा। ऐसे पूर्ण प्रेमी थे, लेकिन वो मथुरा का जो प्रेम है ब्रज के प्रेम से थोड़ा भिन्न है, उसमें ज्ञान मिला हुआ है, ऐश्वर्य ज्ञान है। तो ऐश्वर्य ज्ञान हृदय मानस को, हृदय सरोवर को सुखा देता, भगवान के प्रति उतनी ममता उतना स्नेह नहीं रहता। लेकिन गोकुल के गांव की गली में पग पारत हैं, पग पारत ही जय ही उन्होंने पैर रखा ब्रज भूमि पर, ते ही भूमि के प्रभाव भाव और भर गए। उस धूलि का भूमि का प्रभाव वास्तव में आज भी ब्रजमंडल ऐसा है। कहीं दुनिया में जाए आदमी, लेकिन जो ब्रज भूमि का प्रभाव है वो अपने आप में विलक्षण है। आज के भी महात्माओं का ऐसा अनुभव, हम लोग भी बहुत बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन जो ब्रज भूमि का प्रभाव कहीं नहीं। और इसीलिए आज भी हजारों हजार लाखों लोग उस भूमि में घूमते रहते हैं, और कोई काम नहीं, काम धंधा छोड़कर घूमते हैं ब्रजमंडल परिकर तो घूम रहे। कोई आदमी देखेगा तो कहेंगे क्या रोज रोज 20-20 किलोमीटर चलना है, चलना बेकार, क्या काम। तो भूमि का प्रभाव है कि वो घुमा लेती है। 10-10 हजार, 15-15 हजार आदमी चलते हैं, 1500, 2000, 400 अखंड चलता ही रहता है। दूसरी जगह पर कोई धूल उठाकर किसी के शरीर पर फेंक दे तो आदमी रंज हो जाएगा, लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं। कोई किसी के ऊपर धूली फेंक दे तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य, बहुत लौटते रहते। कारण क्या है कि उस भूमि में भगवान लौटे हैं, वहाँ की तृण चरे हैं बछड़ा बन करके। ऐसा कोई जमीन नहीं है एक इंच भी जहाँ कृष्ण के चरणों की छाप नहीं है ब्रज में। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें वो झूला ना झूले हो, जिसका फल ना खाए, ये जिसके पत्तों से पुष्प से भगवान श्रृंगार न किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी अलक्षित रूप से भगवान वही लीला करते रहते हैं, इसीलिए ब्रज भूमि अद्भुत। तो कृष्ण के प्रति यदि प्रेम उत्पन्न करना है तो भूमि देखेंगे, तो भूमि है ब्रज भूमि। तो नंद ब्रजम श्रीमानिम लोचते विभावसौ छन्नयान निर्विशताम पशूनाम खुर रेणुभिः। विभावसौ निम्लोचते, जब विभावसु अस्त हो रहे थे पश्चिम दिशा में, और निर्विशताम पशूनाम, ब्रज के पशु सब जंगल से चर करके और निर्विशताम प्रवेश कर रहे थे अपने अपने खिड़क में, घर में जा रहे थे। बहुत जल्दी जल्दी वे चल रहे थे, गौएं बहुत तेज गति से चलती हैं शाम के समय अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। इस कारण से बहुत धूली उड़ रही थी, बहुत धूली उड़ रही थी। गोधूली बेला उसको कहते भी हैं, बहुत पवित्र बेला है वह। जिस प्रकार ब्राह्म मुहूर्त होता है उसी तरह से दिन के अंत में गोधूली बेला होती है। उसी समय उद्धव जी पहुंचे और धूल इतनी उड़ रही थी कोई इनके रथ को नहीं देखा, छन्न याना, इनका रथ धूली से ढका था। तो उद्धव जी पर प्रथम कृपा तो ये हो रही है कि ब्रज की धूली इनके देह पर और रथ पर सब पर पड़ने लगी। ये दूसरों का सुधार करने नहीं गए, इनका सुधार चालू हुआ। सबसे पहला सौभाग्य दर्शन के ब्रज का, दूसरा ब्रजरज पड़ने लगी देह पर। छन्न यान, यान छन्न था, कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा था रथ। और सवेरे से चले थे लेकिन रथ को ये हाँक नहीं रहे थे, मनोरथ में थे, सोच रहे थे, इसलिए घोड़े भी मंद गति से चल रहे थे। सवेरे के चले चले शाम हो गई, दिन में कहीं ये खाए पिए नहीं, चलते जा रहे थे बैठ के मनोरथ करते। और इसीलिए आगे नंद महाराज का वर्णन है कि नंद महाराज ने जब उद्धव जी को देखा अपने द्वार के पास आए हुए, तब वे उठ करके और स्वागत किए। तो वहाँ सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं क्योंकि छन्न याना, पहले से रथ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इनके आने का कोई ज्ञान नहीं, नहीं तो वे अगवानी किए होते, वहाँ से बहुत दूर चल करके रिसीव किए होते उद्धव जी को। तो ऐसा नहीं वर्णन, इसे ऐसा इसे निश्चित ही पता लगता है कि छन्न यान होने के कारण नंद बाबा को कुछ पता नहीं। पहले से कोई मथुरा से खबर भी नहीं आई थी कि इस दिन उद्धव जी पहुंच रहे हैं, उनका प्रोग्राम बन गया है, ऐसा कोई खबर नहीं। खुर रेणु भी, निर्विशतान पशुनान खुर रेणु भी, ब्रज में प्रवेश करने वाले पशुओं के खुर रेणु भी, खुर से उड़ी हुई धूलियों से छन्न याना, धूल ढक। सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं उद्धव जी का ब्रज में पहुंचने, क्या धूल उड़ रही है? पशु नाम खुर रेण भी, यदि पशु धीरे धीरे चले तो धूल नहीं उड़ेगी, उड़ेगी कम उड़ेगी, लेकिन जब पशु तेज गति से चलते हैं इधर उधर भागते हैं तो वो धूल ज्यादा उड़ती है। श्रीमान नंद ब्रजम प्राप्त, यहाँ पर उद्धव जी का नाम नहीं लिखा गया है, छन्नयान एक उनकी विशेषता दी गई है और दूसरी विशेषता श्रीमान, तो जिस पर चालों चारों तरफ से धूल भर रही है वो श्रीमान हो रहा है। ये देखिए सुखदेव गोस्वामी की भाषा में विचार कीजिए, उद्धव जी आज श्रीमान हुए, मतलब श्री से युक्त हुए, ब्रजरज पढ़ने पर आज उनकी शोभा बढ़ रही है और इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पर ब्रजरज पड़े वो धन्य वस्तु, वो श्रीमान, श्री का अर्थ है सौभाग्य, सफलता, महाभाग्यवान उद्धव जी ब्रज में पहुंचते ही धूली से इनका श्रृंगार चालू हुआ है। कहीं कोई कह सकता है कि धूली से भर गया जी और श्रीमान हो गया, अथवा श्रीमान का अर्थ है कि भगवान का प्रसादी वस्त्र जो पहने थे, माला पहने थे, से बहुत सुंदर लग रहे श्रीमान। श्रीमान उद्धव छन्नयान विभावसौ निम्लोचती सती नंद ब्रजम प्राप्त, जब भगवान सूर्य अस्त होने की दिशा में थे उस समय ब्रज में प्रवेश किया। श्रीमान का अर्थ श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री भगवत प्रसाद दिव्यालंकारादिन महाशोभावान, और एक अर्थ ये भी करते हैं कि श्रीमान होकर भी छन्नयान थे, इतना सुंदर है चमक रहे थे उद्धव जी, लेकिन फिर भी छन्नयान थे, पशुओं के पैर से उड़ी हुई धूल ढक दी थी उनको, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़े। एक बात समझ लेनी चाहिए कि ब्रज में भगवान दो तरह से रहते हैं, किसी किसी प्रदेश में हमेशा प्रकट रहते हैं, जैसे पहले ब्रज में वन में जाते हैं और वन से आते हैं, वैसे ही आते गोप सखाओं के साथ भगवान प्रकट थे, इसलिए भगवान जब संदेश दे रहे थे तो सखाओं के लिए कोई खास बात वो कहे नहीं, क्यों वहां थे ही वे। भागवत में सब बातें झलकती हैं ध्यान से सुनने पर, तो श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कहीं कहीं प्रकट रहते, जैसे चैतन्य महाप्रभु चार लोगों के साथ नित्य प्रकट रहते, जब जगन्नाथपुरी में थे उस समय वे नित्यानंद प्रभु के साथ हमेशा रहते, इसीलिए उनके विरह की अनुभूति उनको नहीं होती, और भी कुछ भक्त उनके साथ रहते, तो ब्रजवासी बच्चों के साथ ग्वालों के साथ भगवान रहते थे और गौएं भी देखती थी कि ये हमारे साथ चल रहे हैं, वन में चरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसीलिए आप शुरू में देखेंगे कि ब्रज के सुख का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि कोई विरह है, कोई दुख है, ये बात समझने की है। और कहीं कहीं नंद भवन में भगवान प्रकट नहीं थे, गोपियों के बीच नहीं प्रकट, वहाँ उद्धव जाते हैं तो सब बिरान बिरान घर द्वार, कई महीने से घर लिपा पोता नहीं गया था, रसोई घर में जाला लगा था, मकड़े झोल लगी थी, लकड़ी इधर उधर बिखरी, कभी भोजन बना ही नहीं था, इसके पास सनातन गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। और गोपियों के पास भगवान प्रकट नहीं, गोप सखाओं के साथ प्रकट, इसलिए ब्रज में जाना, गाना, खेलना, कूदना, और पशु भी बड़े आनंद में है, वृक्ष भी बड़े सुखी है, ये वर्णन आ रहा है, ब्रज की शोभा का वर्णन करे, वही जो प्रकट प्रकाश भगवान का है ब्रज में। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, वृंदावनम परित्यज पाद मेकम न गच्छति, वास्तव में नहीं जाते हैं, तो कहाँ कहाँ प्रकट रहते हैं उसका वर्णन करते हैं। श्रीमद उद्धवा दत्व में वह पंचभी दर्शन अधिक ऋण उत्थान हेतु है, तो इस श्लोक में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नवे श्लोक में, अधिक रेणु उत्थान का कारण बता रहे हैं और ब्रज के आनंद का वर्णन कर रहे हैं। अधिक क्यों धूल उड़ रही है? वासितार्थे अभिजुद्धि सुस्मिर दृश्य तो बहुत से झुंड के झुंड सां है गौओं के पीछे दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि ये बिल्कुल प्रकट प्रकाश की लीला, भगवान यहाँ प्रकट, तो गौएं आनंद में हैं और बछड़े और सब सभी ब्रजवासी गोप। तो वासितार्थ है, वासितार्थ का अर्थ है पुष्पिणी जो गर्भ धारण करना चाहती है, ऐसी गौओं को वासिता कहते हैं। तो वासिता के लिए मतलब गर्भ धारण करने की इच्छा से युक्त जो गौएं हैं उनके लिए सार है, आपस में लड़ रहे हैं। उद्धव जी ने ब्रज में सबसे पहला दृश्य बहुत अभिजुद्ध भी सुष्म भी सब मस्त थे, बलवान थे, तो वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके चरण से धूली उड़ रही है। उधो भारे ही स्ववत्स कान धावंती भी वास्त्राधिश्च, और कुछ गौएं तो हजारों हजारों ऐसी गौएं हैं जो अभी नया नया बच्चा दी है, तो अपने अपने बछड़ों के प्रति वे दौड़ रही हैं। दिन भर चर करके आई हैं, थन में दूध भर गया है, तो अपने बछड़ों के प्रति बहुत वेग से दौड़ रही हैं, अपने अपने बछड़ों के प्रति। बिल्कुल नंदगांव के खिड़क के पास की लीला, अपने अपने बछड़ों की तरफ दौड़ रहे इसलिए धूल उड़ रही है। और गौएं भी बोल रही हैं अपने बच्चों को, बच्चे भी बोल रहे हैं, सांड हकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए नादीपन इस प्रकार की आवाज है ब्रज में। ये ब्रजन का विशेषता है, नंद गोकुलम की विशेषता है, नादीपन आवाज है, वहाँ ध्वनि है सांडों के हकड़ने की और गौओं के अपने अपने बच्चों के प्रति प्रेम से जो बाएं बाएं करती हैं वह, और बछड़े भी बाएं बाएं कर रहे हैं, तो ये आवाज नादीपन आवाज भरी हुई है। उद्धव जी जब ब्रज में गए तो सब और ये आवाज सुन रहे। इतस्ततो विलंघत भीर गोवत्सर मंडितम सितही गोदोह शब्द अधीर वेद देणु नानी सोने न च। और छोटे छोटे बच्चे ज्यादातर श्वेत वर्ण के हैं, सफेद गौओं में ज्यादातर सफेद वर्ण के बच्चे हैं, बछड़े हैं छोटे छोटे, तो खूब तेज फुदक रहे इधर से उधर विलंघत भी। छोटे छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, उनको खोल दीजिए तो बहुत तेज इधर उधर भागते हैं। इतस्ततः विलंघत भी विशेष तीर्ण लंघत भी बहुत जोर से इधर उधर जा रहे थे, इससे भी धूल उड़ रही है। ये कारण यह भी है। और झुंड के झुंड बछड़े इधर उधर जब वे दौड़ रहे हैं, विशेष करके जब माँ के स्तन का दूध पी लेते हैं बछड़े, और उनको थोड़े काल के लिए उनकी माँ चाटती है सहलाती है, तो इसके बाद वे कूदना चालू करते हैं आनंद भर कर, खूब इधर उधर कूदते। ये बहुत आनंदमय खुशी का दृश्य है वास्तव में, जब गाय के बछड़े खुदकते हो कूदते हो, इसका मतलब स्वस्थ है, ये सुखी है ना। तो इतस्ततः विलंघत भी गोवत्सर मंडितम सीतई, और सीतई गोवत्सई पर सीता सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि वत्सेषु तैते बाहुल्यम है, बछड़ों में उजले बछड़े ज्यादा है, इसका मतलब ये है, और भी है लेकिन उजले ज्यादा। धेनु नाम प्राय धवलत्वे अपि बच्चा नाम अति नित नत्वे नस्तु निर्मल तयापि धवल्या, ऐसे गौएं तो धवल होती ही हैं, उजली होती हैं, लेकिन बछड़े जो नया नया जन्म लिए हैं तो और उजले लग रहे हैं, अभी उनका शरीर गंदा नहीं है, बिल्कुल सफेद, इसीलिए अति धावल्यम सूचित सीतई शब्द पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उजला उजला बछड़ा दौड़ रहा है अति धावल्य वो सब दौड़ रहे। एवं वृषादि भी आनंद मुक्तवा गोपा नाम कर्मणापि सदा, सब जगह आनंद है। अब क्रिया क्या क्या ब्रज में हो रहे, गोदोह चालू हो गया है, उद्धव जी धीरे धीरे ब्रज में जा रहे हैं, तो गौओं का लौटना देख रहे, लौट करके जगह जगह गोदोहन देख रहे हैं, गायों का दुहना चालू हो गया। तो ब्रज में और क्या क्या शब्द तम और क्या क्या शब्द हो रहा है, गोदोह शब्द गाय के दुहने के समय जो शब्द होते हैं, तो गाय के दुहने के समय घरर घरर जो दूध में आवाज पड़ती है वो तो है ही, और गोपों के आपस में शब्द हो रहे हैं, अभी रवा, अभी तो रवा, कोई कहता है मुंच खोल दो बछड़ा, कोई माँ मुंच अभी मत खोलो इसको ले जाओ, मुंच माँ मुंच नय माँ नय इत्यादि विधा वाक्य, ये ले जाओ बाल्टी भर गई दूसरे बाल्टी लाओ, ये करो इस तरह से, इसको गोदोह शब्द कहते। गाय के दुहने के संबंध में शब्द ऐसा नहीं कि भूख जैसा चुपचाप गाय दुह जाएगा यह मशीन दुह लेगी, गाय के दुहने में भी शब्द होता है, गोदोह शब्द उसको कहते, और वो सब क्या कहा जाए, अभी रवई इतना सुंदर है चारों तरफ, अभी तो रव मतलब चारों तरफ रव ही रव है, आवाज ही आवाज है, सब तरफ ध्वनि, ये लाओ ये लाओ ये ले जाओ, ये बर्तन वो लाओ वो लाओ, इस बछड़े को खोल दो इसको बांधो ये करो, फिर उस गाय को हाँक लाओ ये करो वो करो, और लाखों लाख गौवे हैं, लाखों लाख ग्वाल बाल हैं, इसीलिए सब जगह है आवाज 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 आवाज, ये गोदो सब अभी दबा चारों तरफ से भरा हुआ है, और बीच बीच में कहीं कहीं बच्चे देणु बजा रहे हैं, नासरी बजा रहे हैं, और वो बच्चे को देख रहे हैं कि कृष्ण बलराम भी इधर खड़े होकर के गोदोह करवा रहे हैं, उद्धव जी वो नहीं देखे उनको कृष्ण बलराम को नहीं देखे, लेकिन वो बच्चे सब देख रहे हैं, तो कृष्ण जैसे जैसे बांसुरी बजाते हैं तो कोई कोई बीच बीच में बांसुरी बजा रहा है, तो उससे देणु नाम निस्वनेना, देणु नाम बहुवचन है, बहुत सी बांसुरी, बहुत सी बांसुरियां भी बज रही हैं बीच बीच में जहाँ तक, कुछ बच्चे हैं जैसे वो दुहवा नहीं रहे और सीधे गा रहे, कुछ नाच रहे हैं फिरक में, ऐसा नहीं कि बहुत फिक्र में बहुत भारी परिश्रम करके गो दोहन हो रहा है, वो भी आनंद का दोहन है, बच्चे जब गाय चरा करके आए हैं तो वो लोग नहीं दुहवा रहे हैं, इसमें से बहुत कम दुहवा रहे, दूसरे से लोग बड़े बड़े लोग दुहने लगते हैं, तो कहीं बांसुरी बज रहे कहीं पिपहरी बज रहे, च का अर्थ और भी बाजे बज रहे, च अनुक्त समुच्चय, जो बातें नहीं कही हैं उन सब बातों के लिए, समूची बातों के लिए च शब्द का प्रयोग किया गया, जो भी बाजा है समझ लेना चाहिए, बीणा शंख इधर उधर घरों में बज रहा है, कुछ हो रहा है घंटा बज रहा है, कहीं देवताओं का पूजन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब बहुत आनंद का दृश्य है, उद्धव जी देख रहे हैं, गोदोह शब्द भी रवै देणु नाम निस्वने न च मंडितम की नादितम, देणु नाम निस्वने शब्द मंडितम अथवा नादितम इति पूर्वेण अन्वय, यह पहले से अन्वय करें, नादित है वह पूरा ब्रजमंडल, विश्वनाथ चक्रवर्ती पद गोदोह शब्द भिरव का अर्थ करते हैं, मुंच माँ मुंच, मुंच का अर्थ खोल दो अभी मत खोलो, या ले जाकर के बांध दो, उपे ही इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, निकट आओ अफसर जाओ 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 उसको पकड़ो करो करो, या ले जाओ ब्रज में दूध है भर गया, उपे ही अफसर तरस्व माँ तरस्व, तरस्व का अर्थ है जल्दी आओ या जल्दी मत आओ, नय लाओ अनय मत लाओ, दे ही दो गृहार लो उसको दो, ये पकड़ो ये करो वो करो, इस प्रकार से अभी तो रवा हो रहा है गोदो, और बीच बीच में जो धारा बज रही है दूध दुहने की, वो तो हजारों लाखों धाराएं गिर रही गऊ के थन से, वो तो और सुखद धारा है, इस प्रकार से इनको दोष हो रहा है। तो गोपों के कर्म का वर्णन करके अब उस प्रकार से गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ जिन गोपियों का वर्णन किया जा रहा है वे उन गोपियों से भिन्न हैं जिनके लिए भगवान ने संदेश भेजा है, ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके वात्सल्य भाव वाली गोपियां या श्रृंगार भाव वाली भी गोपियां हैं, लेकिन वहां पर प्रकट भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका वर्णन किया जा रहा है। गायन्ति भिश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयः स्वलं कृताभिर् गोपीभिर् गोपैश्च सुविराजितम् सुविराजितम् नन्द ब्रजम्। वहाँ से स्थान हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था। घर घर में जहाँ तहाँ गोपियाँ श्री बलराम और कृष्ण के शुभानी कर्माणि गायन, उनके शुभ कर्मों को गा रही थी। यहाँ शुभ का क्या अर्थ है? मंगलानी कौतुक लीला कर्माणि गोकुल वासिना उत्सव निरूपणार्थम कर्मणाम शुभत्वम त्यक्त्वा गत इति अपि कर्म भवति तथापि स्वस्य हित कर्म न भवति तद व्यावृत्ति अर्थम व गानम। ब्रज की लीलाएं ही गा रहे थे, ये विरह की लीला नहीं गा रहे थे। इस शुभ कार्य यहाँ यह है, अथवा उनके गीत को कोई सुने तो उसकी अविद्या नष्ट होती है, उसके काम नष्ट होते हैं, इच्छाएं नष्ट होती है, ये सुने तो ये सब तो आवाज हो ही रही है। ज्यादातर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्वनि का वर्णन है, गौओं का शब्द, सांहों का शब्द, बच्चों का, दुहने का, दुहने के संबंध में, फिर गोपियां भी घर घर में गा रही। गायंत भीष्ट कर्माणि शुभानि बल कृष्ण, कृष्ण और बलराम की जो जो लीलाएं हैं उसको गा रहे हैं। कैसी गोपियां हैं? स्वलंकृता भी, सुअलंकृता भी, सुष्ठु रूप से बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार की है, बहुत सुखी है। गोपैश्च सुविराजितम् और गोपों के द्वारा सुविराजित है, तो गोपैश्च गोप भी गा रहे हैं। गाने की क्रिया स्त्रियों के लिए है लेकिन गोप भी गा रहे हैं जहाँ का, ये इस समझने से च शब्द से, तो गोपों के द्वारा, गोपियों के द्वारा वह ब्रज अतिशय राजित है, सुंदर लग रहा है। उस सुंदर ब्रज में उद्धव जी प्रवेश किए। यहाँ तो आपको ऐसा लगे जैसे कोई विरह का प्रश्न ही नहीं है। का तिथि गोभी पितृदेवार्चना नीत ही धूप दीप माल्यश्च गोपावास मनोरमम। गोपों के भवनों में जहाँ तहाँ गौ यानी अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, दीप, पितर, देवता आदि की पूजा चल रही है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ वो देख रहे हैं कि गोपों के घर में सूर्य, अग्नि, अतिथि, गाय, विष्ण आदि की पूजा हो रही है घर घर। एक प्रश्न यहाँ उठाया गया है कि जो भगवान के इतने बड़े प्रेमी हैं, उनको ये सब कर्म करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सुखदेव गोस्वामी अपनी दृष्टि से देख कर कह रहे हैं, भले कोई कितना भी बड़ा भक्त हो लेकिन कुछ नित्य कर्म होते हैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गोपों के घर में शुद्ध भगवान की पूजा चल रही है तो उनका मन तो भगवान में लगा रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा शरीर का स्वभाव हो जाता है, अपने आप वो सब पूजाएं चलती है। जैसा भगवान ने कहा था कि जो मेरे लिए लोक और धर्म को छोड़ देते हैं तो उन लोक और धर्म को का पोषण मैं करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान की योग माया की शक्ति है कि गोपों द्वारा जो ये वैदिक कर्म है उनको कराया जा रहा है, सभी घरों में पूजा चल रही है। अग्नि, अग्नि में हवन करना, अग्नि देवता का सत्कार करना, भोजन देना, ये पूजा है। और सूर्य, सूर्य के सामने खड़ा होना, उनको जल देना, शाम का समय है, सूर्य देव की पूजा जहाँ तहाँ हो रही है। यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि गोपावास ही, गोपों के आवास से वह ब्रजमंडल बहुत मनोरम लग रहा था, बहुत सुंदर सुंदर घर है वहाँ, गोपों के घर है, राजाओं के नहीं, ध्यान रखना चाहिए। ब्रज जो है गोपों के घर से सुशोभित हो रहा है, और उन घरों में क्या क्या हो रहे हैं, अग्नि, अर्क, अतिथि, गो, विप्र, पितृ, देव, अर्चन, इनसे अन्वित है, वो घर युक्त है इनसे। कहीं गायों की पूजा हो रही है, गायों को घास देना, बढ़िया से कुटी काट करके डालना, ये गो पूजा है। गाय की पूजा वो आरती दिखाने से नहीं होती है, वो पूजा नहीं है, गाय की पूजा का मतलब उसको खूब अच्छा भोजन देना। भगवान ने एकादश स्कंध में इस बात को कहा है, जवसा देना, गाय को गवत देना, जवस देना, ये पूजा है गाय की। तो गो पूजा चल रही थी, सूर्य भगवान की पूजा, अतिथि की पूजा, कोई अतिथि आ गए तो उनको खिलाना बनाना, उनको देना, स्वागत करना। और बीस ब्राह्मणों की, वेद पाठ करने वाले, शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों की पूजा, पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा चल रही थी। और धूप दीप माला से युक्त सब भवन, सभी घरों में धूप दीप माला, अंधकार से पूर्ण कोई घर नहीं। और घी वहां क्या, बिजली नहीं, शुद्ध घी का दीपक सभी घरों में चल रहा है। आज तो बड़े बड़े धनी आदमी को घी का दीपक नहीं मिल सकता है पढ़ने के लिए। आंख चौपट हो चाहे कुछ भी हो, पढ़िए बिजली में किरासन तेल में जैसे तैसे, और सभी घरों में घी के दीपक जल रहे हैं। जगमग था, बहुत सुंदर लग रहा है, मनोरम। तो भगवान का धाम है, उसके विषय में क्या कहना, लेकिन बाह्य दृष्टि से वो इतना सुंदर है, उसको मनोरमम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। किसका मन रम जाएगा, सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त परम हंसों का मन खींच रहा है ब्रजगांव को, नंदगांव, इसे मनोरमम। तो अपने लिए वो कह रहे हैं, क्या कहें, वो परीक्षित इतना सुंदर है कि मन को खींच रहा है, मन रम जाता है वहीं पर मनोरम इन सब के द्वारा। वो वहाँ पूरा लेना पड़ेगा, वास्तार्थे विदुध्य द्वीप वहाँ से लेकर कर यहाँ तक सब दृश्य आ रहा है आपके सामने। अब वन की ओर दृष्टि डालते हैं, आसपास जो वन है नंदगांव, सर्वतः पुष्पित वनम, सब और पुष्पित वन है, पुष्प खिले हुए द्विजाली कुल नादिकम, पुष्प उपलक्षण है, फल से लदे हुए वृक्ष हैं, फूल हैं, द्विजाली कुल नादिकम, और भौरों का समुदाय घन 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 कर रहा है, उससे नादित है सारे वृक्ष। वही प्रदेश शोभा वर्ण जाती है, श्रीजी गोस्वामी पाद जी कहते हैं अब बाहरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, सर्वतः पुष्पित वनम, पुष्पित वनम सर्वतः का से सर्व स्थाने से, सर्व वृक्ष लतादिना पुष्पितत्व, सब स्थान में और सभी वृक्ष, सर्वतः का ये अर्थ, सभी स्थानों में सभी लता वृक्ष पुष्पित हैं, खिले हुए पुष्पित वन, द्विजाल कुल नादितम, द्विजा नाम पक्षी नाम भृंगा नाम कुल समूह है नादितम, हंस कारंडवा किरण ही पर्व संदेश मंडितम, हंसों के द्वारा, कारंडव के द्वारा, जल कुकुट के द्वारा और कमल समूह के द्वारा, कमल की नाल जिसमें भरी हुई है सरोवर में, ऐसे सरोवरों से मंडित, वासितार्थे भी युद्ध भी इत्यादि न जब पशुना हृष्टत्व मुक्तम। तो इसमें श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह कहा गया कि वासिता के लिए सांड दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसके द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य का वर्णन किया जा रहा है, बहुत स्वस्थ, सुष्मिक अर्थ है बलवान मत, पशु बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि भगवान अभी चरा रहे हैं। तो पशुओं के स्वास्थ्य का इसमें वर्णन किया गया है। वनादि नाम तजत पुष्टि तत्व आदि नाम, और वन आदि बिल्कुल खुश है, प्रसन्न है, उसके बाद पुष्टि तत्व ये वर्णन किया गया। ये तत्व ज्ञातु न दृष्ट में समय थी श्री भगवत वत्सा गोपा नाम मुखत श्रवण झटती तदागमन आश्चर्य कत्तर मन में। इसका भाव यह है कि जब मथुरा से बच्चे लौटे थे, गोप लौटे थे, तो लोग कहे थे कृष्ण जल्दी आएगा, तो ये लोग हमेशा हरा भरा रहते थे, वो आसन रहते थे और प्रतीक्षा में अगवानी के लिए कि हो सकता है कृष्ण आज आवे, इसीलिए फूल और फल लदे रहते हैं, प्रतिदिन प्रतीक्षा ऐसा रहते थे कि आज आएंगे आज आएंगे, इसीलिए खिले हुए थे, नहीं तो कृष्ण के शोक में इन्हें मुरझा जाना चाहिए। मधुबन तुमकत रहता हरे विरह विजोग श्याम सुंदर के ठाहे क्यों नजरे, गोपियां कहते तुम क्यों हरे हो, तुम क्यों नहीं जल जाते हो? लेकिन वो तो प्रतिक्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अपने पास जो संपत्ति है, फल और फूल, उसको भी धारण किए रहते थे नदी में।
समागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत्। अथ उद्धव कृष्ण विजुक्त प्रकाशम नंदालयम प्रविवेशाः।
सारा दर्शन चक्रवर्ती पाजी कहते हैं अब उद्धव कृष्ण विजुक्त नंदालय में प्रवेश कर रहे हैं। तो कृष्णस्य अनुचरम, कृष्ण के अनुचर को नंद जी ने देखा। कृष्णस्य अनुचर, अपने कोटि कोटि प्राणों से भी प्रिय पुत्र का अनुचर आया है, साथी आया है, सेवक। ऐसा किसी ने जाकर के ये कहा होगा नंद महाराज से कि कृष्ण का सेवक आया है? यह अनुचर का अर्थ अनुमान, निरंतर निरंतर जो उनके साथ रहता है वो आया। जो कुछ भी कहा हो, उद्धव जी ने अपना बहुत परिचय नहीं दिया, और उद्धव से कोई पूछे आप कौन है तो थोड़े कहेंगे कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, वो कहेंगे मैं कृष्ण का दास हूँ अनुचर। ऐसी बात को सुनकर के नंद को किसी ने कहा तो वो जाने कृष्ण से अनुचरण भक्तन और प्रियम, प्रिय उद्धव को देखा हूँ। किसका प्रिय? कृष्ण से आत्मनोवा, अपना प्रिय अथवा कृष्ण का प्रिय। उद्धव जी की कथा नंद बाबा के कान में बहुत बार गिर चुकी थी कि वहाँ मथुरा में उद्धव कृष्ण का साथी है, बहुत प्रिय है, साथ साथ रहता है। ये बात सुने थे तो आज वो देखे, प्रियम शब्द लिखा गया। तो कृष्ण से प्रियम अथवा नंद से प्रियम, आत्मनो प्रियम, अपने प्रिय को देखे। जब अपने प्रिय पुत्र का साथी है तो अपना प्रिय है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे रख रहे हैं कि अब वो पढ़ने वालों पर ही छोड़ दिया जाता है किसका प्रिय, कृष्ण से प्रिय या आत्मनो प्रिय। प्रियम दोनों अर्थ है, अपने प्रिय उद्धव को या कृष्ण के प्रिय उद्धव को। तम उद्धवम, ऐसे प्रसिद्ध उनकी विद्वता, कृष्ण के साथ सख्य, उनका सुनिर्मल स्वभाव, सब कुछ प्रसिद्ध था। ऐसे उद्धव को आगतम समागम, आगतम आया हुआ देखकर, स्वगृह द्वारी प्राप्तम संतम, अपने घर के दरवाजे पर बिल्कुल आया हुआ देखा है। आगतम प्राप्तम, अभ्यंतरतः समीपम आगत्य, घर से बाहर आकर के, समागम्य का सम आगम्य, अभिगम्य नहीं है। अभिगम्य शब्द रहता तो इसका मतलब चल करके अगवानी की, समागम्य घर से बाहर निकल करके, प्रत्युत्थानादिना संगम्य। क्यों नहीं नंद बाबा पहले उनको देखे? तो छन्न यान तया तदा गमन गमन अज्ञाने न अग्रे अनभिगमना विधि, अभिशब्दा प्रयोग, अभिशब्द का प्रयोग नहीं है। रथ है, धूलि से ढका था, इसलिए नंद बाबा को पता नहीं था, आता हुए अगवानी नहीं कर सके, सीधे घर से निकले। प्री पर और प्रसन्न हुए, क्या प्रसन्न हुए? अपने पुत्र जैसा रूप देख करके और यह सोच करके कृष्ण की कुछ बात बताएगा, इसके कारण उनको कुछ हर्ष हुआ। ऐसा नहीं कि कृष्ण का विरह ही समाप्त हो गया और प्रीत हुए इसलिए कि योग माया ने उनको थोड़े काल के लिए प्रसन्न किया कि उद्धव का स्वागत वे कर सके, उनसे प्रश्न कर सके कुशल प्रश्न, नहीं तो वो तो मूर्छित पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रीत शब्द का प्रसन्न हुए, तो उनकी जो दुर्दशा है विरह में उससे मिलान करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उस दशा से कुछ बेटर दशा है प्रीत, कुशल संभाषण आदि करने में समर्थ हुए। तो आए और परिस्वज्य उद्धव को वही उसी तरह से आलिंगन में ले लिए जैसे कृष्ण का आलिंगन करते थे। इसका अर्थ है कि उद्धव अभी प्रणाम करना ही चाहते थे तब तक नंद बाबा हृदय से लगा लिए, बहुत देर तक रखे रहे हृदय। और वासुदेव धिया अर्चे और उद्धव जी की पूजा किए, अर्चना किए, स्वागत किए। किस प्रकार से? वासुदेव धिया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके इष्ट देव भगवान विष्णु ही आ गए। ऐसा कहा जाता है किसी भी अतिथि का स्वागत यह मान करके करना चाहिए कि भगवान ही अतिथि के रूप में हमारे घर आए। तो पहले से ऐसा स्वभाव था, किसी भी अतिथि का स्वागत नारायण बुद्धि से करते थे। तो आज भी उद्धव जी के आने पर उन्होंने सोचा कि भगवान हमारे घर पर आए हैं, अतिथि रूप से हमारे इष्ट देव भगवान नारायण हमारे घर पर आए हैं, इस भाव से उनकी पूजा की, स्वागत किया। हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि सामान्य अपि अतिथौ याते वासुदेव धियार्चनम्। एक सामान्य अतिथि भी किसी के पास आवे तो उसकी पूजा कृष्ण बुद्धि से, वासुदेव बुद्धि से की जानी चाहिए। तो तस्योक्त मच्युत प्रीत रथ कीर्ति क्षमा। तो फिर स्वयं वासुदेव की विभूति जहाँ आया है उसने वासुदेव बुद्धि से पूजा की जाए तो ये कौन आश्चर्य, तो और योग्य है। साधारण अतिथि की पूजा वासुदेव बुद्धि से की जाती है, यहाँ तो साक्षात वासुदेव ही आया, वासुदेव का सखा आया। अथवा इसका अर्थ है कि नंद बाबा को ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात कृष्ण ही आ गया, यह मान करके इतना उल्लास व खुशी है कृष्ण आ गया, कृष्ण को आया हुआ मान करके ही पूजा की। जो भी हो, सज्जनों का यह स्वभाव होता है कि वे अतिथि को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। भोजितं परमानेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः। स्वागत करने के बाद वे भोजन कराए। भोजितं परमानेन, उद्धव जी के लिए वर्णन नहीं है कि वे खाए, खिलाए गए, यह वर्णन खिलाया, उनको खिलाया गया उद्धव जी को। क्या? परम अन्न। परमान्न कहते हैं जब दूध में, खटी दूध में, शुद्ध दूध में चावल पकाया जाता है, कुछ खाड़ डाल करके, गुड़ डाल करके, खाड़ जो गुड़ और चीनी के बीच का, बीच की अवस्था है, खाड़ डाल करके और उसमें घी डाल करके दूध में जब पकाया जाता है तो उसको परम अन्न कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ अन्न। तो वो खिलाया गया उनको। इसका अर्थ है कि उस दिन उद्धव जी के लिए कोई सब्जी नहीं बनी, दाल और कुछ नहीं, चटनी अचार कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं, न बनाया गया था, केवल एक आदमी के लिए भोजन बनाया गया, उद्धव जी को खाया दिया गया, खिलाया। इस तरह यदि और तरह से स्वागत हला होता उद्धव जी का तो और वस्तुओं का उल्लेख होता, केवल परमान्न का उल्लेख नहीं है। तो उद्धव जी प्रसाद खा करके और संविष्टम कशिपौ सुखम, कशिपौ सज्जा पर सुख के साथ मैंने आराम से संविष्टम, कुछ काल के लिए कायम प्रसार्ज विश्रांत वंतम, थोड़ा शरीर को पसार करके और विश्राम करने लगे, सोए नहीं, संविष्टम लिखा गया, लेट गए। अभी तो उनको बात करनी थी, वो सोच रहे थे ऐसे ऐसे चालू करेंगे, यह कहेंगे, ऐसे कहेंगे, जिस काम के लिए आए थे उसकी चिंता उनको थी। सुखपूर्वक लेटे और नंद बाबा ने कुछ संकेत किया, अथवा नंद बाबा का अभिप्राय जानकर उनके जो सेवक थे वो बेचारे वे भी नहीं खाए पिए थे, लेकिन वे आए पाद संवाहन करने लगे उद्धव जी, कोई पैर दबाने लगे, कोई पंखा झलने लगे, कोई चंदन आदि कर ले किए उनको, पाद संवाहन आदि भी चरण दबाने के साथ साथ, और इसके द्वारा गतश्रम, उद्धव जी का परिश्रम चला गया, थकावट दूर हो गई। जब उनकी थकावट दूर हो गई तो नंद बाबा उनके पास आए और परी अपृच्छा परी अपृच्छा परी परी परिदेवन तया पृच्छा